सुमजतबाहु रब्बुहु फताब अलै वहदा, तीन बातें इसमें। फिर इसके रब ने इसको पसंद कर लिया, इसकी तौबा कबूल फरमाई और इसे हिदायत बख्शी। अब जरा आयत का नंबर निकाल दें बीच में से। अब मैं पिछली आयत के साथ आगे कर मिला के पढ़ूंगी। वअसा आदमु रब्बहु फगवा सुमजतबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। हम कहते हैं अल्लाह किनको चुनता है, जो बड़े नेक होते हैं, ये सोचते हैं ना। अल्लाह कहते हैं उसने नाफरमानी की, भटक गया, तो मैंने उसको चुन लिया। सुभान अल्लाह, ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई डॉक्टर कहे कि मैं सिर्फ सेहतमंद लोगों का इलाज करूंगा। बस दफा हम अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों की वजह से इतने परेशान होते हैं, हम कहते हैं मैं का नेक हो सकती हूँ। देखिए, आदम को नबुवत मिल रही है एक नाफरमानी के बाद, और पीछे आप सुन चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत मिली कत्ल होने के बाद भी, उनके हाथ से जो हो गया। तो आप और मैं मायूस ना हो, बड़े से बड़ा गुनाह करके आया हुआ शख्स भी ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। जब अल्लाह आदम को चुन सकता है एक नाफरमानी के बाद, तो मेरी नाफरमानियां कोई इससे ज्यादा, अल्लाह तो मुझे भी चुन। दुआ करें। अब यहां देखिए लफ्ज इज्तबा, जीम बा या जबा कहते हैं जमा करने को, करीब करना। नबी सल्लम के नाम के साथ एक लफ्ज आपने सुना होगा, नबी मुजतबा, वो यही लफ्ज है, चुना हुआ। जबी बेसिकली ये जबीन होती है ना, जो पेशानी, इसको भी कहते हैं। तो ये भी एक किस्म की इज्जत की अलामत होती है, ठीक है। पहला दर्जा चुना, फिर फताबा, फिर तौबा की, ताबा उनकी तौबा कबूल की, ठीक है। वहदा, अब ये है तीन स्टेप। हम भी दुनिया के इस समंदर में खोए हुए थे, नाफरमानियां, असियान, गवा, भटके हुए थे, डिसोबीडियंट थे, नाफरमानियां थी। कभी सोचा भी नहीं था कि दिन में अल्लाह ताला से इतनी बार क्या कहते हैं, ठीक है। अब पता चल गया कि अल्लाह की जात जो है वो हमें क्या कहती है, कि तुम काम करो, बेहतर करो। सोच पैदा हुई, ख्याल आया दिल में, किसी ने बुलाया, मैं आपकी जुबान में बोलने लगी हूँ जो आपकी जिंदगी में होता है। आप सिमरत, हम सब एक ही हैं कुरान पढ़ने वाले, हम सब भी तो दुनिया के मेलों में खोए हुए थे ना, थी नाफरमानियां, अब भी हैं, छुट्टी तो नहीं है, लेकिन कम तो हो गई है ना। या आप ये कह लें कि पहले एहसास नहीं था, अब एहसास हो गया। पहली सूरत सुमज तबाह क्या हुआ, अल्लाह आपको इधर ले आया। इधर से मुराद क्या है, कुरान के लिए किसी को किताब की तरफ ले आना, ये अल्लाह की उसको चुनने की अलामत है। सही बुखारी की रिवायत है, आप इंशाल्लाह सही बुखारी के सेशन में पढ़ेंगे, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके लिए खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। समझ आ तो रही है ना, ये अलग बात है कि समझने के बाद फिर हम पीछे हो जाएं। तो क्या पता चला कि किसी को दीन की तरफ ले आना, ये पहला स्टेप है। अब आप यहां आ गए, दूसरा स्टेप। अब आप देखिए इज्तबाह हो गया, चुन लिया। अब जब आप यहाँ आके बैठे, सूरत फातिहा आपकी जिंदगी में खुली, कुरान पढ़ा आपने, कहो या कना बुद्व या कनस्तैन ए दिन सिरात मुस्तकीम, उसी दिन से आज तक क्या रोज रील नहीं चलती अपने गुनाहों की, गुनाह खुले ना, तो आपने फौरन फिर अगला स्टेप आ गया, फतह भाई, फिर तो बहुत ही है। जब तक कुरान खुलता नहीं है, किताब खुलती नहीं है, अपने गुनाह दिखते नहीं है। ये आपकी जिंदगी का दूसरा स्टेज थी। खुद से पूछिए, इन 16 पारों में अपनी कितनी बुराइयां छोड़ चुकी हूं, तौबा किससे कर चुकी। फिर एक और दर्जा भी था आपकी जिंदगी का, गुनाह तो थे चलो सो थे, नेकियों के मौके की फिक्र ही नहीं थी। यानी बहुत सारे गुड डीड्स के चांसेस होते थे, नहीं करते थे, कई दफा जिल्हा जाता था, गुजर जाता था, कभी ख्याल ही नहीं आता था कि इतना कीमती वक्त है मेरा, एक एक मिनट कीमती है। तो फिर अगला स्टेप आता है वहदा, गाइडेंस, नेकियां करने की तौफीक मिलती है। ये है तरतीब। पहले बंदा गुनाह करता है, अल्लाह उसको यूं कान से पकड़ के प्यार से लाकर अपनी बात के लिए बुला लेता है, फिर बंदे को अपने गुनाह रुलाते हैं, और फिर नेकियों के जज्बे आते हैं, और फिर दिन ब दिन हिदायत हिदायत हिदायत, आगे से आगे हिदायतें मिलती जाती हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपका किताब से ताल्लुक जुड़ा रहेगा, और आपका दिल गलता रहेगा, पिघलता रहेगा। जैसे पानी डाल दें तो गोश्त गलता ही जाता है, गलता ही जाता है। जिस वक्त पानी खत्म हुआ, हंडिया जलनी शुरू हो जाती है। फिर दो में से एक काम करना पड़ता है, या तो चूल्हा बंद कर दो नीचे से, या कच्चा गोश्त खा लो और जलने दो हंडिया को। कुरान का पानी हमारे दिलों की मिट्टी को गलाता है, آدم اور حوا نے توبہ کی، سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے کہ دونوں نے پھر دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، یہ توبہ تھی، اللہ نے ان کو دے دی ہدایت. فرمایا آیت 123، قال اهبطا منها جميعا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اس جنت سے نکل جاؤ. یا نوٹ کیجئے گا، اهبطا پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈیول، تم دونوں، بوتھ آف یو مراد ہے. من ہا سے مراد ہے جنت. جمیعن سارے، بعدکم لباد ندو، یہاں جمع آ گیا. یہ نہیں کہا کہ بعدکما لباد ندو. تو اهبطا میں لفظ آدم اور حوا ہے، لیکن بعدکم لباد ان میں بیچ میں ابلیس بھی شامل ہو گیا، یہ مطلب ہے. پیچھے اس پہ بات ہو چکی ہے، انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، عورت مرد کی دشمن کبھی بن جاتی ہے، کبھی مرد عورت کا دشمن بن جاتا ہے. کہا اب تو جاؤ، نکل گیا جنت سے، وہ شاہی لباس اتر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کو خیال آ گیا، دعا مانگی، کہا جاؤ معاف کیا تمہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے فتح علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اب آدم کی اس بات پہ کہ دوبارہ جنت دے دو، دیکھیے نا، ناراض ہو کے جنت سے نکالا، اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا، تاب علیہ، معاف کر دیا. تو سوال کیا ہوگا کہ اب اللہ دوبارہ جنت ہو. دیکھیے آپ کا بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ اس کا کھلونا پکڑ کے الماری میں چھپا دیتی ہیں اور کہتی ہیں چلے جاؤ میرے سے بات نہ کرنا، ناراض ہوں. پھر وہ روتا ہے، بل بلاتا ہے، آپ کے پاؤں میں لپٹتا ہے، پھر آپ اس کو پیار کرتی ہیں، اوکے جاؤ میں ناراض نہیں ہوں. تو فوراً کیا کہے گا کہ ممی اب کھلونا بھی دے دو، اب کھلونا بھی تو چاہیے نا. تو آدم نے بھی تو ایسے ہی لگتا ہے کوئی تقاضا کیا تھا کہ اللہ جب آپ ناراض نہیں ہیں، یو آر ناٹ اینگری اینی مور، تو پلیز سینڈ می بیک ٹو جنت. تو کہا نو سوری، اب جنت کا راستہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے روٹ آف جنت چینج کر دیا، سبیل الجنت بدل دیا. اب کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اونلی ون وے گو ٹو جنت از وے آف گائیڈنس، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم، جس کی دعا کرتے ہیں. جہنم میں بہت رستے جاتے ہیں، ملٹی وے، آپ ہائی وے لے لیں، سپر وے لے لیں، فلاں لے لیں، دس دس دیٹ. جنت میں جانے کا راستہ اونلی ایک ہے، اینڈ دس از تھرو گائیڈنس. اس کتاب کو بک آف گائیڈنس بنائیں گے تو جنت ملے گی. آپ بک آف برکہ بنا لیں، برکت لے لیں اس کتاب سے، آپ جن بوت بگا لیں، آپ اس کتاب سے خوبصورت لفظی تعلق قائم کر لیں، کوئی شرط نہیں آپ جنت میں جائیں گے. ہاں، جس دن آپ اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنائیں گے تو جنت ملے گی. اس پہ ایک پورا لیکچر ہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت بنانا، اس کا ایک پاور پوائنٹ بھی ہے، اور اس کی بیس پہ ایک کورس کے انٹرو میں اس پہ بات کی تھی کہ کیا ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا. تو اس میں میں نے پورے دن کی مثالوں میں سے بات کی تھی کہ 17 بار دن میں ہم قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں. اور جب آپ قرآن سیکھ جاتے ہیں، اب جیسے آپ کو 16 پاروں کا ترجمہ کسی حد تک یاد ہو گیا نا، تو اب آپ 16 پاروں کے الفاظ کو سمجھ پاتے ہیں نا. یہی ہے اصل میں اس بات کا اظہار کہ ہم اس کتاب کو اب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر عمل بھی آتا ہے. فرمایا فمن اتبع ہدایا، پھر جس نے اتباع کی ہدایت کی، دیکھیں دوسری دفعہ لفظ آ رہا ہے اس ایک جملے میں ہدایت کا، اب پیروی کرو ہدایت کی. کس کی پیروی کرتا ہے انسان؟ استاد کی، لیڈرز کی، اداروں کی، یا مسلک کی، فرقے کی؟ نہیں، اتبع ہدایا، ہدایت کی، صرف اس کی بات مانیے جو ہدایت کا راستہ دکھائے. ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد پھر حق کی طرف بلانے والے. ہر ہادی ہادی نہیں ہوتا فرعون کی طرح. تو لہٰذا جس نے ہدایت کی پیروی کر لی، فلا یضل ولا یشقا، نہ تو وہ کبھی بھٹکے گا اور نہ ناکام ہوگا. تو یہ تھا آدم اور ابلیس کا قصہ. یہاں کیا پتہ چلا کہ اب اگر آدم کے بچوں نے ابلیس اور شیطان کے وار سے نکلنا ہے تو ان کو ہدایت کا رستہ لینا پڑے گا. اور گائیڈنس از اے گفٹ، ہدایت ایک ہدیہ ہے. جو اللہ کے اس تحفے کو قبول کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اور جو نہیں کرتا. اب آپ کہتے ہیں سوری وی کینٹ، بس اگلی آیتیں پڑھنے سے پہلے ویسے ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، بالکل دل کو خالی کر دیں ہر چیز سے. پھر ان آیتوں کو سنیے، اور جہاں تک ایک مضمون ہے نا وہاں بات کریں گے. اور یہی ہے ہمارا آج کا مین تھیم، ڈپریشن، غم، زندگی میں پریشانیاں، دکھ کس کو ملتے ہیں؟ आइए देखते हैं। वह मनारद अन जिक्री, और जिसने मुंह फेर लिया मेरी याद से, एराज किया, उर्दू में भी हम बोलते हैं, अरज कहते हैं ये चिक्स को, गाल, जब मुंह फेरा जाता है तो मुंह चौड़ा हो जाता है। उर्दू में पहले दौर में भी लोग कहते थे ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है, ये तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है, ये मुंह क्यों सूजा हुआ है, वो स्टाइल है। मनारद अन जिक्री, ये तुम मुंह क्यों फेरते हो मेरी याद से, मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से। और जिक्र कुरान के लिए भी आता है, जिक्र याद के लिए भी आता है, और जिक्र नसीहत के लिए भी आता है। यानी पीछे जो दावत दी गई थी कि इस किताब को किताब हिदायत बना लो, लेकिन तुम नहीं माने, नहीं सॉरी वी कैंट, तो फिर याद कर लो तुम्हारा इंजाम क्या होने वाला है। फइन्ना लहू मईशतन दनका, तो इसकी जिंदगी बहुत तंगियों वाली होगी। मईशत का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना, मईशत, आशा या ईशु ईशतन, आशा कहते हैं जिंदगी बसर करना। चले आप में से किसी का नाम आयशा है ना, आयशा लफ्ज इसी से है, जीने वाली। आशा या ईशु ईश, ये जो उर्दू में लफ्ज है ना ऐश, ये भी इसी की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो जीना, पीछे हम पढ़ेंगे आखिरी पारे में, फी ईशत रौदिया, वो जन्नत की दिलपसंद जिंदगी में होंगे। तो मईशत वही लफ्ज है, जीना, लाइवलीहुड, जिंदगी। इसमें इंसान का उठना बैठना, खाना पीना, जाना पढ़ना, सोना जागना, यानी जो डे टू डे हमारी लाइफ है, अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरी इस याद से, मेरी इस नसीहत से मुंह फेरेगा, मैं उसकी जिंदगी उस पे जन का तंग कर दूंगा। घुटन होगी, तंगी क्या है, प्रेशन। आज के लिए तो इसका खूबसूरत तर्जुमा ईजाद हो गया ना, पहले नहीं समझ आता था कि जिंदगी तंग क्या होगी, लोग सोचते थे पता नहीं ये तंगी क्या होगी। लेकिन आज के दौर की इंसानियत को जब पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी कि मैं उसकी जिंदगी को डिप्रेशन में डाल दूंगा, दुखी कर दूंगा उसको, सैड चीजें होंगी उसके पास, खुशी नहीं होगी, सामान्य राहत होंगे, राहत नहीं होगी, खाना होगा, लज्जत नहीं होगी। आज इंसानों को देखें तो ये बात इतनी फिट महसूस होती है इंसानों के ऊपर कि आज सब कुछ है इंसानों के पास, लेकिन खुशी क्यों नहीं है। अगर हम अपने ऊपर लेकर सोचें इस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें समझ आती है कि आज के दौर का पैराडॉक्स क्या है। आपने एक मारूफ पोइम भी देखी और सुनी होगी कभी, पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम, कि आज हम लोगों का मसला क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ पा क्यों नहीं पाते। पोएम में बेसिकली द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम इन हिस्ट्री इज दैट, आज की इंसानियत, यानी देखिए ना, इस आयत को हमने फर्द के लेवल पे भी समझना है और हमने इस आयत को कौमों के और नेशंस के नाते से समझना है। आज दुनिया का जो हाल है, अगर हम उसको देखें तो हाल क्या है कि वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स। सच है कि नहीं, लंबी इमारतें, टेम्पर लूज है। छोटी सी बात है, हम अमूमन लोगों के मुंह से क्या सुनते रहते हैं, जी टेम्पर लूज कर दिया मैंने। भाई कैसे कर दिया लूज, बर्दाश्त खत्म। आज बच्चियों में बर्दाश्त नहीं है, घर टूट जाते हैं। अभी आप कपड़े उनकी शादियों पे पहने हुए अलमारियों में हैंग ही नहीं कर पाए तो खबर आ जाती है कि गड़बड़े शुरू हो गई हैं, टेम्पर लूज है। वाइडर फ्रीवेज बट नैरोरर व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू आज बड़े नैरो हैं, घुटन है आज हर बंदा जो अपनी जात पे। मैं एक सिस्टर हमारी अपनी साथी हैं तो उनकी बात सुनाती हूँ, किसी बेबी सिटिंग में काम करती है। अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग में उन्होंने ये बात शेयर की, कहती है कि बच्चों के स्कूल में मैं बच्चों की बेबी सिटिंग कर रही थी तो एक बच्चा छोटा सा था तो वो एक बच्चों की जो डमी गाड़ियाँ नहीं होती उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसे करते हैं ना बच्चे खिलौनों पर। तो कहती है मैं अपनी जगह से उठी कि ये खुद चढ़ रहा है, गिर ना जाए तो मैं इसको चढ़ा दूँ। तो कहने लगी जब मैं उसको ऊपर गाड़ी के करने लगी तो जो मेरी मैनेजर थी वो मुझे देख रही तो मुझे कहने लगी कि तुम इसको ऐसे नहीं चढ़ा सकती। कहती मैंने कहा क्या करूं, क्यों? कहती पहले खड़े होकर इस बच्चे से पूछो क्या तुम इस गाड़ी पे बैठना चाहते हो, फिर बिठाओ। कहती आपने देखा नहीं कि वो तो बैठने की कोशिश में है। कहती बट यू नीड टू आस्क हिम फर्स्ट, टेक हिज परमिशन देन डू दिस। ये है शॉर्ट टेम्पर। इतने से बच्चे से जो आप पूछते हैं करोगे, खाओगे, पियोगे तो बाद में क्या होगा, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आज बच्चे क्यों बात बात पे ये अपने ही बच्चों के साथ लड़ते हैं, शॉर्टर टेम्पर्स हैं, क्योंकि आज हमारी जिंदगियां तंग हुई हुई हैं, बहुत नैरो व्यू है। आप सोचते हैं कि आज का इंसान रोशन ख्याल है, बिल्कुल भी रोशन ख्याल नहीं है। फिर वी स्पेंड मोर, हम खर्च ज्यादा करते हैं बट हैव लेस, है थोड़ा खर्च ज्यादा करते हैं, वी बाय मोर बट इंजॉय इट लेस। आप जरा सोचिए कि जो लोग शॉपिंग करके आते हैं क्या खुशी साथ पैक करके लाते हैं अपने बैग में? बाजार में तो लगता है कि हर चीज हमें लेनी थी, और घर आते ही फिक्र लग जाता है महंगी तो नहीं ले ली, जरूरत की थी असली भी ली है कि नहीं, नकली है क्या है, और सर का दर्द लेकर आते हैं, और जब जाते हैं घर में तो बच्चों की लड़ाइयाँ निपटने वो याद ही नहीं रहता कि लिया क्या था, वो इधर उधर लिफाफा हो जाता है, एक हफ्ते दो बार याद आता है वो क्या लिया था, किधर है याद ही नहीं। खुशी तो नहीं लेके आते, सर का दर्द परेशानी लेकर आते हैं। तो आज सिर्फ एक ही बात है, स्पेंड स्पेंड, गो बियॉन्ड द लिमिट्स और बाकी बातों को छोड़ दें। या आज का क्रेडिट कार्ड कल्चर क्या है नहीं तो वो खर्च कर लो, बिल्कुल एक सोच है जो दी जाती है लोगों को, हालांकि रियलिटी उससे बिल्कुल फर्क है। फिर आप देखिए कि एक और हमारी आज की सूरत है, और वो क्या है, वी हैव बिगर हाउसेस एंड स्मॉलर फैमिलीज। सच है कि नहीं, बड़े बड़े घर हैं और एक घर में रहते हुए दूसरे बंदे से फोन पे बात करते हैं लोग, ये लंदन वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है कि यहाँ जगह छोटी है, इर्द गिर्द तो पानी है, घर बड़े करेंगे तो पानी में चले जाएंगे। लेकिन आप अपने मुल्कों की, मैं खुद ऐसे घरों के अंदर रह भी चुकी हूँ और देखती भी हूँ, घर के अंदर रहते हुए माँ बच्चे घर में फोन पे बात करते हैं कि बेटा नीचे आइए तशरीफ लाएं खाना खा लें, ये हालात है। कमरों में इंटरनेट कॉम लगे हुए हैं कि फोन करो मासी को कि मुझे पानी दे दो, बड़े घर है कौन उधर। मोर कन्वीनियंस बट लेस टाइम, सहूलत ज्यादा है आज फिर भी हर बंदा क्या कहता है, टाइम ही क्यों नहीं मेरे पास, वक्त ही नहीं है, करें क्या, मजबूर बहुत है, हम करें क्या और किस तरह से लेकर आए। फिर वी हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस, डिग्रियां कितनी बड़ी है, डॉक्टरी में 10 साल लगा चुके हैं, सेंस इतनी भी नहीं है कि नब्स देख के बता दें कि देखो तुम्हारे किडनीज फेल हो रहे हैं, कहते नहीं जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी कुछ नहीं कर सकते। पहले अकीम नब्स देखते थे तो कहते थे इसको ले जाओ फटाफट, इसका ये हालात है, और आज टेस्टों में इतना उलझाते हैं कि बंदा पूरा हो जाता है। तो आज के डॉक्टर्स की मैंने मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि आप, ये मारूफ बात है कि डॉक्टर्स दवा नहीं देते आज के क्योंकि सू हो जाएगी, गलत तो सेंस नहीं है ना, वो लोगों को नहीं पढ़ पाते। पहले लोग आंखों का रंग देख के समझ जाते थे, नब्स देखते थे, नाहनों का रंग देखते थे, आज वो बेचारे मशीनों को देखते हैं और किताबों से पढ़ते हैं। फिर इसी तरह मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट, इल्म बहुत है लेकिन आज हम जजमेंट नहीं कर पाते। जजमेंट से मुराद दूसरी नहीं, एक होता है बीइंग जजमेंटल, वो नहीं मैं कह रही, जजमेंट के हाउ कैन आई जज यू, मैं आपके चेहरे से कैसे पहचानूं आप कैसे हैं, धोखे क्यों खाते हैं हम लोगों से। फिर आंसू बहाती हैं माएं, सोचा था बड़ा नेक बच्चा होगा, निकला कुछ नहीं, दाढ़ी देख के शादी कर दी थी फिर ये होगा, हाफ़िज़े कुरान देखकर शादी की थी, जज नहीं कर पाते हमें लोगों की बात, उनकी गुफ्तगू, उनके रहन सहन से उनको जज करना ही नहीं आता, क्योंकि हमारे पास आज तंगी है। ये सारी बातें साथ सब की मईशत अंदन का, कि हकीकत यह है कि जब इंसान अल्लाह के दीन से कटता है ना, सेंस भी कम हो जाती है। जितना ये किताब आपको लोगों को पढ़ना सिखाती है, उतना तो शायद आपको लफ्जी तर्जमा भी नहीं याद आता होगा। कुरान पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा आप ह्यूमन रीडिंग सीखते हैं, लोग आपको डॉच कर ही नहीं सकते, इल्ला ये इंसान है, फिर धोखे खाता है, चोटें खाता है, बहुत सारी खाता है, लेकिन वो जो हर वक्त बेवकूफ नहीं बनते। कुछ लोग हैं वो कहते हैं, फिर रोते ही देखे हैं मैंने कई लोग, वो भी धोखा दे गया, इतना मैंने उसकी खिदमत की, चाय पिलाई, दावतें की, देखो उसने आंखें बदल ली। सहेलियों में धोखे खाते हैं, रिश्तेदारियों में हम कितने धोखे खाते हैं, क्योंकि हमें जज नहीं करना आता, हमारी सोच गलत है। फिर मोर एक्सपर्ट्स बट मोर प्रॉब्लम्स, एक्सपर्ट्स आज ज्यादा हैं कि पहले ज्यादा थे? छोटी छोटी चीज पे तो आज डिग्री मिलती है, और एक एक प्रोफेशन और एक एक चीज के अंदर आप देखिए आगे और बहुत सारी है। क्या इंसानियत के मसाइल खत्म हो गए? प्रॉब्लम भी उतने बढ़ते जा रहे हैं। मोर मेडिसिन बट लेस वेलनेस, सच बताएं दवाइयों के जो नाम आज याद हैं, मैं अगर आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूं ना कि जितनी दवाइयों के नाम याद है आप सारे लिख के लाएं, तो मेरा ख्याल है कि 100-200 नाम तो हम सारे इस क्लास में से जमा कर लेंगे, हालांकि मैं इसमें सबसे ज्यादा जाहिल हूँ। एक डिस्प्रिन का नाम आता है, एक एस्प्रिन का नाम आता है, मेरी अम्मी को बहुत आते हैं, जरा किसी का मसला हो कहेंगे ये खा लें वो खा लें, पाकिस्तानी कल्चर ही है। ऐसी बात हो रही थी, ये सिस्टर है न्यू मुस्लिम, तो कहने लगी कि डू यू हैव एनी पेन किलर, मैंने कहा सॉरी मेरा ख्याल है कि नहीं है मेरे पास कोई भी, एक किसी ने दी थी मैं चेक करती हूँ, मैंने कहा डोंट वरी गो डाउन स्टेयर्स, क्योंकि पाकिस्तानी पीपल हैव टू मेनी मेडिसिन, मुझे यकीन है उनके घर से तुम्हें दवाई भी मिलेगी साथ और दो नुस्खे भी मिल जाएंगे। लेकिन इतनी दवाइयां खा के भी क्या हम सेहतमंद हैं? और मैं कह सकती हूँ कि मैंने वाकई उनकी बात के बाद चेक किया, ऐसे मेरे जहन में आया, क्योंकि जब पाकिस्तान जाती हूँ ना तब भी जबरदस्ती कोई दवाई दे ही देती है, तो वो पड़ी रहती, बाद में भूल ही जाता है ये किसकी है। तो इस दफा की याद थी, दो तीन गोलियां थी कोई, तो वो मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसी लिखा हुआ था शायद कोई पैरास्टामोल। मैंने वो उसको खाना भेजा, उसके साथ डाल के भेज दी। मेरे पास अब घर में कोई दवाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या करनी है, क्यों कि इंसान इन चीजों में जब बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो वो हर वक्त अपने आप को रखता है, और अल्लाह ताला सबको बीमारियों से आजाद करे और दवाइयों से भी आजाद करे। वी ड्रिंक टू मच, स्मोक टू मच, स्पेंड टू रेकलेसली, यदि हम खाते पीते भी बहुत है, ये हर वक्त जो हमारे बच्चे खाते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनके हाइपर होने का। लव टू लिटल, ड्राइव टू फास्ट, गेट टू एंग्री टू क्विकली, स्टे अप टू लेट, गेट अप टू टायर्ड। इतनी देर से सो के उठते हैं फिर भी थके हुए उठते हैं, बुखार तो होना ही है जब 12 बजे तक सोते ही रह गए। बस आप सोच लें, रीड टू सेल्डम, वॉच टीवी टू मच, एंड प्रे टू सेल्डम। नमाजें भी पढ़ते हैं, तुम्हारा दिमाग किधर होता है उस वक्त? आंखें बंद पूरी खोल के तो वजू भी नहीं करते कि नींद ही ना खुल जाए। वी हैव मल्टीप्लाइड आवर पोजेशंस बट रिड्यूस्ड आवर वैल्यूज। आज वैल्यूज बदली है, बहुत बदल गई, इंसानों में जीने की वैल्यूज ही बदल गई। वी टॉक टू मच, लव टू सेल्डम, एंड हेट टू ऑफन। यदि आप देखिए, मैं इन सारी बातों को आपको बताते हुए सोच रही हूँ, लकद खलक नल इंसान फी अक्सनी तकवीम। अल्लाह ने इंसान को बहुत प्यारी तकवीम दी थी, लेकिन वो खुद क्या बन गया। वी हैव लर्न हाउ टू मेक अ लिविंग बट नॉट टू लिव। जीना नहीं आता, जीने की चीजें सिर्फ हम जमा करते हैं। अल्लाह ने इंसान को बहुत ऑनर दी थी, हम पीछे गिर गए, कलनाम हो गए। वी हैव बीन ऑल द वे टू द मून एंड बैक, यानी चांद पे तो हम पहुंच गए हैं लेकिन क्या नहीं हुआ। बट हैव ट्रबल क्रॉसिंग एंड स्ट्रीट टू मीट द न्यू नेबर्स, यानी चांद पे पहुंच जाते हैं लेकिन अपने हमसाए का हाल नहीं हमें पता कि उधर क्या है, उनको मिलने नहीं जा सकते। वी हैव कॉन्कर्ड आउटर स्पेस बट नॉट इनर स्पेस, बाहर की दुनिया फतह कर ली है, अंदर दिलों को नहीं फतह कर सके। और दिलों को क्या चीज फतह करती है, आपको कोई एक जुमला याद आ रहा है? फातह आलम। जब इंसान इंसानों से प्यार करता है ना, तो वो इंसानों को जीतता है। मैं को एक रिपोर्ट सुन रही थी, अमेरिका की ये बात है, कुत्तों के कब्रिस्तान है। और वो एक सिस्टर थी, तो वो बता रही थी कि जब किसी का कुत्ता मरता है तो फिर वो जिस दुखी दिल से उसको दफनाते हैं, फिर वहां जाके फूल डालते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वहां जाके उसकी कब्र पे रोते हैं और गाने गाते हैं, और उन्हीं की माएँ हो सकता है ओल्ड होम्स में बैठी हों। ये जुल्म हुआ इंसानियत के साथ। फ़ैन लहू मईशतन जन का, जानवरों से ज्यादा प्यार है। और आपको पीछे सुना चुकी हूँ, ह्यूमन राइट्स की नुमाइंदा औरत, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, जब वो खुद फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट हुई तो कहती थी कि मेरे अंदर कोई मॉन्स्टर है। कुत्तों बिल्लियों के साथ रहती थी, घर बड़ा होता, एनिमल राइट्स की वो थी, लेकिन इंसान का बच्चा अपने पेट के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। यही होता है, याद रखिए, इंसानों से प्यार करेंगे तो इंसानियत आएगी, जानवरों के साथ जिएंगे तो जानवरों के साथ रहना होगा। वी हैव डन लार्जर थिंग्स बट नॉट बेटर थिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें तो हैं लेकिन अच्छी चीजें नहीं है अभी इस वक्त हमारे पास। वी हैव क्लीन अप द एयर बट पोल्यूटेड द सोल, सच है ना, हवाओं को साफ करते हैं, रूहें गंदी हैं। मईशतन दन का, वी हैव स्प्लिट द एटम बट नॉट आवर प्रेजिस, यानी अपने अंदर के वो जो लोगों के साथ हमारे ग्रजिस हैं वो नहीं खत्म करते, यही मतलब है ना इसका, कि एटम को तोड़ दिया अपनी जात को नहीं तोड़ सके। वी राइट मोर लर्न लेस, वी प्लान मोर बट अकम्प्लिश लेस, प्लानिंग्स बहुत होती हैं लेकिन उस पर अमल कम होता है। वी हैव लर्न टू रश बट नॉट टू वेट, भागो भागो, इंतजार नहीं होता, छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लग जाते हैं। वी बिल्ड मोर कंप्यूटर्स टू होल्ड मोर इंफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस मोर कॉपीज देन एवर, बट हैव लेस कम्युनिकेशन। इंसानों से नहीं है कम्युनिकेशन, यहाँ बैठे एक मैसेज करते हैं सारी दुनिया में पहुंच जाता है, और अपने घर के अंदर जो बंदा उससे हम बात ना करते हो शायद। दीज आर टाइम्स टू फास्ट फूड, फास्ट फूड पर स्लो डाइजेशन, ये तो बहुत सच्ची बात है। आप में से किसी का फास्ट फूड तो नहीं है, माजरत के साथ है। चलिए, दीज आर द टाइम ऑफ फास्ट फूड एंड स्लो डाइजेशन। टॉल मैन एंड शॉर्ट करेक्टर, स्टीप प्रॉफिट्स एंड शैलो रिलेशन, खोखले रिश्ते हैं, रिश्तों में मिठास ही नहीं। दीज आर डेज ऑफ टू इनकम बट मोर डाइवोर्स, टू इनकम से मतलब समझे, शौहर भी कमाए तो बीवी भी कमाए, तो जब बेचारी बीवी कमाएगी भी और आपका घर भी साफ करेगी, बच्चे भी पालेगी, तो रिजल्ट तो फिर डिवोर्स ही है ना, दोनों कमाए जी फिर भी खुश नहीं रहते, खुश रह लें तो बड़ी बात थी। फैंसियर हाउस बट ब्रोकन होम, घर तो बहुत फैंसी है हमारे लेकिन टूटे हुए अंदर से, दिल जो टूटे हुए हैं, हमारे घरों में मोहब्बत नहीं है ना। दीज आर डेज ऑफ क्विक ट्रिप्स, डिस्पोजेबल डाइपर्स, थ्रो अवे मॉरलिटी, यानी हर चीज डिस्पोज कर देते हैं। वन नाइट स्टैंड, ओवर वेट बॉडीज एंड पिल्स दैट डू एवरी थिंग फ्रॉम चीयर टू क्वाइट. मुझे शायद ये समझ आई है, अगर पीछे जाना है तो देख लेते हैं, यानी कि हम पिल्स लेते हैं बहुत सारी लेकिन खुश नहीं रह सकते, या सुकून की तलाश में बाज़ दफ़ा हम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें उनसे खुशी फिर भी नहीं मिलती जी. एंड पिल्स दैट डू एवरी थिंग फ्रॉम चीयर टू क्वाइट टू किल, यानी खुश होने के लिए खाते हैं फिर वो हमें मार ही देती हैं, ये मतलब है. यानी एक किस्म की ये दवाइयाँ हमें खामोशी से मतलब मौत के पास कर देती हैं. अल्लाह अकबर. इट इज़ अ टाइम वेन देयर इज मच इन द शो विंडो एंड नथिंग इन द स्टॉक रूम. ज़्यादा डिस्प्ले है आज. पहले लोगों के पास दौलत ज़्यादा होती थी, दिखती कम थी, और आज दिखती ज़्यादा है, अंदर से सब क्रेडिट का माल है, कर्जों में डूबे हुए नस्लें. अल्लाह ताला सबको माफ़ करे और आसानियाँ कर दे. अ टाइम वेन टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग दिस लेटर टू यू, यानी एक लफ्ज भी है तो वो आप तक टेक्नोलॉजी से पहुंचेगा. एंड अ टाइम व्हेन यू कैन चूज आइदर टू शेयर दिस इनसाइट और टू जस्ट हिट डिलीट, यानी आसान है ना, किसी से शेयर करें या डिलीट कर दें. रिमेंबर स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वन बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी अराउंड फॉर एवर, यानी ये जो छोटी छोटी मशीनों से एक दूसरे से खुश होते रहते हैं, ये है कि इंसानों के सबक गुजारे. मुझे हैरत होती है जब एक जगह चार लोग बैठे हैं तो चारों के हाथ में आईफोन और वो खेल रहे हैं, मैसेज भी उसमें ही करते हैं कि बेटा नीचे आओ खाना खा लो. सोचने की बात है ना कि आज कम्युनिकेशन भी हमारी मशीनों के जरिए हो गया है. रिमेंबर से अ काइंड वर्ड टू समवन हु लुक्स अप टू यू इन अ और यानी पसंद की नजर से देखने. रिमेंबर टू गिव अ वार्म हग टू द नेक्स्ट वन टू यू, हक दें एक दूसरे को. इस वक्त जो लोग खाली कुर्सियां रख के बैठते हैं फिर उनको नुकसान हुआ है ना. असल बात यह है कि हम मईशतन जनका में सच्ची खुशियां आज हमें कम ही दिखती हैं, इल्ला माशाल्लाह, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है. तो खुशियां जो होती हैं वो इन चीज़ों से नहीं मिलती. जब अब इंसानों से कटे तो जानवरों से जुड़ गए. आज यकीन करिए कि ये दुनिया एक इल्यूजन है, इल्यूसिव वर्ल्ड में हम आज रह रहे हैं. दूर से दिखती कुछ और है, असल में कुछ और है. इस तरह हाइपोथेटिकली इस तरह से लोगों को दिखाते हैं 30 रुपए की बचत है, शर्त यह कि पहले 100 रुपए खर्च करें. यानी इस तरह के ट्रैप में आज हम आए हुए हैं कि हमें समझ नहीं आती, ज्यादा कमाओ और ज्यादा स्पेंड करो ताकि बच्चे खुश हों, और बच्चे बेचारे आपकी मोहब्बत वाली गोद की बजाय वो ठंडे ठंडे कॉइन्स लेकर नौकरों के साथ जाके चीजें खरीदते दिखते हैं. समझ नहीं आती. एक औरत की बात याद आ गई, अपने शोहर से इस बात पर खफा थी, कमाते बहुत हैं बच्चों को टाइम नहीं देते. फिर क्या होता है जब बहुत शोर में चाहती हूँ बच्चों को टाइम दे तो उनको लेके जाते हैं और कुछ उनकी पसंद की चीज़ें महंगी महंगी खरीद के घर छोड़ के फिर चले जाते हैं कि जाओ तुम इन खिलौनों से खेलो हम जा रहे हैं. यही सोचते हैं ना कि बच्चों को ये चीज़ें देंगे तो फ़ायदा होगा. तो याद रखिए कि दुनिया और आखिरत कभी बराबर नहीं है. हम ये कहते हैं ना दुनिया भी और आखिरत भी, दुनिया और आखिरत एक चीज़ नहीं है, इनके बीच में एक बैलेंस रखना यही जीना है. और जो इससे हटता है वो मईशतन दनका. और ये दुनिया की तंगी भी नहीं है सिर्फ, इसके बारे में मुफस्सरीन कहते हैं मईशतन ज़नका में नंबर एक दुनिया की तंगी, और दूसरी बात यह है कि कब्र तंग कर दी जाएगी, और तीसरी यह है कि यानी जो बरज़ख़ का वक्त है वो उसके लिए बहुत तंग होगा. देखिए ये दुनिया जो है ना ये आखरत का अक्स है, जो आज करेंगे ना कल वहाँ वही हमारे साथ हो रहा होगा. एक हदीस में काफिर की मौत जब आती है तो कब्र उसके साथ क्या मामला करती है, वो रिवायत आपको पढ़ के सुना देती हूँ. और हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमें दुनिया की तंगियों से भी बचाए और आखिरत की भी तंगियों को हमसे दूर करे. हदीस में आता है कि जब एक गुनाहगार यानी काफिर को या यानी मुख्तलिफ दर्जे होंगे उसी के साथ ये सारी बात आएगी, कब्र में डाला जाता है तो उसके साथ क्या होता है. इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, कहते हैं कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह की याद से दूर होता है और अल्लाह के रास्तों पे नहीं चलता, अल्लाह के नबियों की किताबों से दूर होता है, तो उसकी दुनिया की जिंदगी भी तंग होती है. दुनिया में खाना पीना पहनना ओढ़ना रहना सहना इसकी फराही तो होती है लेकिन दिल में यकीन और हकीकत ना होने की वजह से हमेशा शक्को शुबे तंगी और किल्लत में मुबतला रहते हैं, और अल्लाह की रहमत से महरूम होना है दिल की तंगी. खैर से खाली हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वादों का यकीन नहीं है, मरने के बाद की नेमतों में इनका हिस्सा नहीं है, और सबसे बड़ी तंगी तो क्या है कि अल्लाह से बदगुमान है कि मेरी तो किस्मत ही नहीं अल्लाह ने अच्छी की, गई चीज़ को आने वाली नहीं समझते. खबीस रोजी बास लोगों ने यानी नापाक सोर्स ऑफ इनकम है ना जो इंक्लूडेड, कहते हैं ये मईशतन दनका है. फिर इसी तरह इसकी एक तफसीर है गंदे अमल, मईशतन दनका क्या है, कैसे लोग गंदे काम करते हैं. और फिर कब्र तंगो तारीख है, वहाँ इस तरह दबोचा जाएगा कि दाई पसलियाँ बाई में और बाई पसलियाँ दाई में घुस जाएंगी. اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کی قبر ہرا بھرا سرسبز باغیچہ ہے، 70 ہاتھ کی کشیدہ، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا چاند اس میں ہے، خوب نور اور روشنی پھیل رہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہو۔ اور کافر کی موت اتنی بری ہے کہ کافر کی قبر اس کے لیے عذاب کی ہے، اللہ کی قسم اس پر 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں اور ہر ایک کے سر ہیں۔ یعنی یہ روایت مرفوع نہیں ہے لیکن روایت موجود ہے۔ قیامت کے دن وہ کیسے حال میں اٹھے گا، اس کو آیتوں کی روشنی میں سن لیجئے کہ دنیا کی تنگیاں تو تھیں سو تھی، وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ امیجن کیجئے، کسی کو آج ہی پتہ لگ جائے کہ اگلے سال وہ اندھا ہوگا، بلائنڈ ہو جائے گا، کیا لگے گا؟ قال رب لما حشرتنی عاما، وہ کہے گا میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا میں بینائی والا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا میں جیسا حال ہوگا جس پہ ہم مریں گے اسی پہ اٹھیں گے، تو دنیا میں تو اچھی بھلی آنکھیں تھیں، سب ٹھیک تھا، آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ جواب سن لیجیے 126 میں، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اوپر جڑ گیا ٹاپک کتاب ہدایت سے، تمہارے پاس نشانیاں آئی تھیں، آیتیں دی تھیں، اللہ نے تمہیں موقع دے دیا تھا سیکھنے کا، سمجھنے کا، ہدایت لینے کا، پر تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ جو لفظ نسیتا ہے نا، نسیان سے، اس کا معنی بھولنا بھی ہوتا ہے اور نظر انداز بھی ہوتا ہے، انجان بنے رہے، اگنور کرتے رہے، تمہارا اگنورنٹ رویہ تھا، ایٹیچیوڈ شو کیا تم نے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج کے دن تم بھلائے جاؤ گے، کیسے؟ جہنم میں ڈال کر تمہیں ہم بھلا دیں گے، جہنم سے نکالنا ہی بھول جائیں گے۔ اللہ کے لیے یہ بھول جو ہے یہ بھول نہیں ہے، یہ ٹٹ فور ٹیٹ والا بات نہیں ہے، ایک محاورہ ہے عربی میں، جیسی بات ہوتی ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ادھر آتا ہے، ورنہ اللہ تو نہیں بھولتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے آج ہمیں اگنور کیا، کل ہم تمہیں اگنور کریں گے، اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اب لوگوں کے رویے اور ان کے بات کرنے کے انداز کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں نا، جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا قرآن کے ساتھ، تو کل اللہ کیوں اس کو بلائے؟ دیکھیے آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ آپ سے بات نہیں کرنا پسند کرتا، تو کیا آپ اس سے بات کریں گے؟ آپ کہیں کہ نہیں کرتا تو نہ کریں۔ تو جب دنیا میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تو گویا کہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہا، اور نماز نہیں پڑھی، اللہ کو بات سنانی نہیں چاہیے، تو کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر کے بولے گا، سناؤ کیا حال ہے، کین آئی ڈو سم تھنگ فار یو، تم آج بھولو کل ہم بھولیں گے تمہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 51 میں پڑھ چکے، فل یوم ننساہم کما نسو لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم ان کو ایسے بھلائیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے، نسو اللہ فانساہم انفسہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو اپنی جانیں ان کی بھلا دیتا ہے، اگنور کر دیا جائے گا۔ تو ہم سب اس کے اوپر اپنی فکر کر کے دیکھیں کہ آج اللہ کا مقام میری نظر میں کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں میں کیسا ہوں؟ کا بہت آسان ہے جواب، کا دیکھ لو کہ تمہاری نظر میں اللہ کیسا ہے۔ جو آج ہماری نظر میں اللہ، اللہ کا دین، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت اتنی اہم ہے، اللہ کی نظر میں ہم ویسے ہی ہیں۔ دیکھیے محبت دو رخی ہوتی ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں وہ آپ سے نہ کریں، یہ الگ بات ہے، کوئی پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوں، لیکن دلوں کا تعلق ہوتا ہے، تار جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سے آپ کو پیار ہے تو یقیناً اللہ کو بھی آپ سے پیار ہے، اور اگر معاملہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو دوسری طرف دیکھیں۔ پھر یہ جو آیت کا لفظ ہے، یہ صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، یہ شرعی آیتیں ہوتی ہیں، کونی آیتیں بھی ہیں، کائنات سے غور و فکر، نہ اس دنیا پہ غور کرتے تھے، موسم پہ ہی باتیں کرتے رہتے تھے، کبھی سوچتے نہیں تھے کہ یہ موسم بدلتے کیوں ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ کچھ آیات پڑھنا چاہیں، حدیثیں نوٹ کریں، تو قبر کا بیان اقبال کیلانی صاحب کی جو سیریز کی بک ہے، اس کے پیج نمبر 148 اور 166 پہ احادیث ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا۔ قبر کے بیان میں آپ یہ حدیثیں ماخود نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں پوری ڈکٹیٹ بھی کروں، اور اب لکھ بھی نہیں پاتے، صرف ریفرنس کے لیے بولا جاتا ہے۔
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔